रात पूरी तरह हवेली पर उतर आई थी। बाहर लॉन की पीली लाइटें चमक रही थीं और पुराने पेड़ों की परछाइयां दीवारों पर धीमे धीमे हिल रही थीं। हवेली हमेशा की तरह भव्य थी, लेकिन आज उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे दीवारें भी किसी अनकहे तनाव को महसूस कर रही हों। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल लैंप की हल्की रोशनी उसके थके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके हाथ में फोन था। वही नंबर बार बार स्क्रीन पर खुलता, फिर बंद हो जाता। उसने अदिति को कॉल किया। रिंग गई, फिर कट। उसने फिर कोशिश की, इस बार सीधा कॉल काट दिया गया। झुंझलाकर उसने फोन बेड पर फेंक दिया और बालों में हाथ फेरते हुए बुदबुदाया, आखिर कर क्या रही है। सुबह दोनों साथ कॉलेज गए थे, सब सामान्य था, कम से कम उसे तो ऐसा ही लगा था। लेकिन लंच के बाद अदिति नजर नहीं आई। उसने सोचा क्लास में होगी, फिर मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। शाम तक वो घर नहीं लौटी। अब रात के 10 बज चुके थे। उसके मन में बार बार वही ख्याल आ रहा था, क्या वो अब भी पार्टी वाली बात से नाराज है। कल रात जब शामली का फोन आया था और वो अचानक पार्टी छोड़कर चला आया था, उसने अदिति को ठीक से समझाया भी नहीं था, शायद वही बात उसे चुभ गई। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आर्यन ने सिर उठाया। हाँ? दरवाजा धीरे से खुला और शामली अंदर आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। क्रीम रंग की साड़ी, ढीले बंधे बाल और चेहरे पर शांत मुस्कान, लेकिन आंखों में हल्की जिज्ञासा। वो कमरे में आई और सहज स्वर में बोली, क्या बात है, अदिति घर क्यों नहीं आई? आर्यन सीधा बैठ गया। पता नहीं, उसने नजरें चुरा ली। शामली ने आगे पूछा, साथ कॉलेज गए थे ना तुम दोनों, फिर सिर्फ तुम ही वापस आए, झगड़ा हुआ है क्या? कुछ पल चुप रहने के बाद आर्यन ने धीमे से कहा, हाँ कुछ वैसा ही समझ लो। कल जब तुम्हारा फोन आया था, मैं उसे अकेला छोड़कर आ गया था, शायद उसी वजह से नाराज है। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। शामली ने उसे ध्यान से देखा और धीमे स्वर में कहा, तो इसका मतलब ये सब मेरी वजह से? उसके लहजे में हल्की आत्मग्लानी थी, या शायद वो जताना चाहती थी। आर्यन तुरंत बोला, नहीं ऐसा मत कहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। शामली ने ग्लास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लेकिन आज तुमने भी डिनर नहीं किया, विश्वनाथ जी बहुत परेशान थे, बार बार पूछ रहे थे कि तुम नीचे क्यों नहीं आए। आर्यन ने ग्लास हाथ में ले लिया पर पिया नहीं, वो खिड़की की ओर देखने लगा। शामली ने नरमी से कहा, जानती हूँ तुम अदिति के लिए परेशान हो, दिखता है तुम उसकी बहुत परवाह करते हो। इस बार आर्यन ने साफ शब्दों में कहा, करता हूँ। एक पल को शामली की आंखों में कुछ चमका, लेकिन वो तुरंत सामान्य हो गई। उसने सहजता से कहा, तुम कहो तो मैं विश्वनाथ जी को बता दूं, वो जाकर ढूंढ लेंगे उसे, इतनी रात हो गई है। आर्यन ने तुरंत मना किया, नहीं अभी नहीं, शायद दोस्तों के साथ होगी। तभी फोन की स्क्रीन चमकी, अदिति का नाम उभरा। आर्यन ने तुरंत कॉल रिसीव किया। अदिति तुम कहाँ हो? उसकी आवाज में चिंता साफ थी। उधर से ठंडी संयमित आवाज आई, मैं ठीक हूँ, दोस्त के घर हूँ, आज यहीं रुकूंगी। आर्यन चौंका, अचानक बिना बताए? उसने कहा, बताने के लिए ही कॉल कर रही हूँ, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। यह शब्द सुनकर वो ठहर गया। स्पेस? किस बात की? कुछ पल चुप्पी रही, फिर उसने कहा, बस चाहिए, कल बात करेंगे, गुड नाइट, और कॉल कट गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा माट आया। आर्यन कुछ पल फोन को देखता रहा। शामली ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, दोस्त के घर है, आज वहीं रुकेगी। शामली ने हल्की मुस्कान दी, कम से कम सेफ तो है। फिर उसने कहा, हर रिश्ते में कभी कभी स्पेस जरूरी होती है, शायद उसे थोड़ा वक्त चाहिए। आर्यन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर की लाइटें अब उसे फीकी लग रही थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने जैसे खुद से कहा। शामली ने उसके थोड़ा पास आकर बोली, कभी कभी लड़कियां उस बात से ज्यादा आहत होती हैं जो कही नहीं जाती। उसके शब्द सुनकर आर्यन को पार्टी का वो पल याद आ गया, अदिति का अकेले खड़ा रह जाना, शायद उसने सच में उसे समझाने की कोशिश नहीं की थी। शामली ने जाते जाते कहा, कल जाकर मना लेना, वो तुम्हारी बात टाल नहीं पाएगी। उसके शब्द सामान्य थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी आश्वस्ति थी। वो कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही फिर सन्नाटा फैल गया। आर्यन ने दूध का एक घूंट लिया, अब वो ठंडा हो चुका था। उसने दोबारा अदिति का नंबर देखा, कॉल करने को उंगली बढ़ी, फिर रुक गई। कल, उसने खुद से कहा, कल सब साफ कर दूंगा। उधर शहर के दूसरे छोर पर अदिति भी जाग रही थी। फोन उसके हाथ में था, आंखें छत पर टिकी हुई थी। उसके भीतर उलझन थी, एक तस्वीर थी, एक शक था। क्या सच में उसे सिर्फ स्पेस चाहिए था, या उस हवेली में कोई ऐसा सच छुपा है जो सब कुछ बदल सकता है? रात और गहरी हो गई। हवेली बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर तीनों अपने अपने कमरों में जाग रहे थे, और शायद सच में खेल अब शुरू हो चुका था। शहर के उस हिस्से में रात थोड़ी हल्की लग रही थी। अदिति अपनी दोस्त निहारिका के कमरे में थी। दोनों ढीले पजामे और टी शर्ट पहने बिस्तर पर टिक कर बैठी थी। कमरे की लाइट मंद थी। खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की चमक दीवार पर पड़ रही थी। निहारिका ने उसे पानी का गिलास थमाया। पहले रिलैक्स कर, सांस ले ठीक से, पूरा दिन तूने खुद को टेंशन में रखा है। अदिति ने गिलास हाथ में लिया लेकिन घूंट नहीं भरा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे रोना चाहती हो पर खुद को रोक रही हो। तू ओवरथिंक कर रही है, निहारिका ने धीरे से कहा, हो सकता है वो सच कहना चाहता हो। अदिति ने हल्की हंसी हंसी, कड़वी सी। पता नहीं नेहा, अगर उसे सच में मेरी परवाह होती ना तो वो मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाता, सच नहीं छुपाता, शायद वक्त तलाश रहा हो। तो अदिति की आवाज भर्रा गई, मैं भी तो उसकी जिंदगी में कुछ हूं ही नहीं, कम से कम मुझे समझाता, पूछता कि मैं ठीक हूं या नहीं। लेकिन नहीं, उसके लिए मैं हमेशा समझ जाएगी वाली लड़की हूँ। निहारिका उसके पास खिसक आई। तूने उसे साफ साफ बात की? अदिति ने सिर हिलाया। हर बार मैं ही क्यों समझूं, हर बार मैं ही क्यों मैच्योर बनूं, उसे दिखता नहीं कि मैं हर्ट होती हूँ। कमरे में कुछ पल चुप्पी रही। अदिति ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है उसे मेरी परवाह ही नहीं है। निहारिका ने उसका हाथ दबाया। परवाह है, बस शायद वो दिखा नहीं पा रहा, लेकिन भागकर साइलेंट हो जाना भी हल नहीं है। अदिति ने आंखें बंद कर ली। दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में खड़े थे।